ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक 24% से अधिक मतदान रिकॉर्ड किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि वोट देने के लिए उत्साही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। केंद्र शासित प्रदेश के 6 जिलों में 26 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 3,502 मतदान केन्द्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। इस चरण में लगभग 25,78,000 मतदाता 239 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर को पहले चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ था। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मतदाताओं से वोट डालने और लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की है। इस बीच 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के निरीक्षण के लिए आज कश्मीर का दौरा कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि शिष्टमंडल में अमरीका, मैक्सिको, गयाना, दक्षिण कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के राजनयिक शामिल हैं। इधर हरियाणा विधानसभा के लिए भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सोनीपत जिले के गोहना में जनसभा करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि हरियाणा की जनता ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि भाजपा राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए श्री सरमा ने कहा कि सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे का फार्मूला अंतिम चरण में है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। भारत एशिया पावर सूचकांक में जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कोविड के बाद भारत ने आर्थिक विकास की अपनी क्षमता में 4.2 अंक की वृद्धि की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने भविष्य के संसाधनों के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। सूचकांक 27 देशों और क्षेत्रों को उनके बाहरी वातावरण को आकार देने की क्षमता के आधार पर स्थान प्रदान करता है। इसका दायरा पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में रूस और प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका तक है। वैश्विक ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारत वर्ष 2030 तक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। अमेरिका में न्यूयॉर्क स्थित इस कंपनी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत की आय वृद्धि स्थिर हुई है। मजबूत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और सकारात्मक निवेशक के कारण लाभ वृद्धि की गति 2030 तक स्थिर रह सकती है। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। इन कार्यों से भारत के विनिर्माण परिदृश्य में क्रांति आई है और हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मेक इन इंडिया भारत को विनिर्माण और नवाचार शक्ति केंद्र बनाने के 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प का उदाहरण है। उन्होंने हर संभव माध्यम से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों के लिए प्रयास जारी रहेंगे और साथ मिलकर हम आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब भारतीय जोड़ी का मुकाबला कल ताइवान के ली ची चुन और तीन चुन सुन से होगा। मिक्स डबल्स में एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी ने मलेशिया के हो लो यी लू और बिंग कुन की जोड़ी को पराजित किया। हालांकि ऋत्विका शिवानी और रोहन कपूर की जोड़ी को थाईलैंड के रूतना पाक और जेनिका की जोड़ी से पहले दौर में हार कर सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने इसराइल के दुबावेंको दानिल को 21-14, 2-15 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।